हरे कृष्णा, यदि आप में से किसी को हिंदी में ट्रांसलेशन या तेलुगु में ट्रांसलेशन चाहिए तो पीछे चले जाइए, उधर और टैमिल में भी ट्रांसलेशन हो सकता है, तमिल में भी ट्रांसलेशन होता है, हिंदी में भी पीछे ट्रांसलेशन होता है, उनको हिंदी में भी
We missed the last.
We speak in Sanskrit or Hindi, then they can understand. They should be able to know.
You're talking about the Malayali side?
Yeah, actually, Prabhupada was suggesting this. In the 1950s, Prabhupada was suggesting that. In the Back to Godhead magazine in the 1950s, when Prabhupada was writing, Prabhupada said that Sanskrit should be made the spoken language of India. And he suggested that to start off, all the languages should be spoken Sanskritized. In other words, everyone can't immediately start speaking Sanskrit, but they can start speaking Sanskritized, whatever, Hindi or Malayalam and Bengali already Sanskritized. Like in Hindi, instead of saying sharam, you can say lajja, like this. And then once people get the vocabulary, then they can introduce the grammar. So I had an interesting experience once. I was discussing with a friend of mine, a devotee scholar. We were discussing one point, how the Lord doesn't like pride in his devotees. And then he had compiled some points in Telugu. Actually, he's from Udupi, but he was living in Andhra Pradesh for many years. So in Telugu, he compiled so many different examples of how the Lord doesn't like pride in his devotees. And he said, listen, I'll read this. He started reading in Telugu, and he said, wait a minute, I don't understand Telugu. And he said, no, you just listen, you'll understand. I understood everything, because it was all Sanskrit, Sanskritized language, so I could follow. So if we all, actually now English is the link language, but it's Lajja Bhasha. Lajja Bhasha means it's spoken by Lajjas principally. And also Lajja Bhasha means that it is a-Sanskrit. Sanskrit, the very meaning means it is perfectly composed. The very nature of the language is that it's perfect. Whereas English, it's absolutely imperfect. If you read a word, even I'm a native English speaker. But if I see a new word, I can't understand how it's pronounced. I can only guess. It may be pronounced completely differently to the way it's written, because it's an imperfect language. So actually, what should we do? Speak in Hindi?
Yeah, do.
After saying all that. No, Hindi Bhagavad Gita, eh?
Hindi.
आशा है चलो अनुवाद करने का प्रयोजन नहीं होगा, जरूरत नहीं होगा, आवश्यकता नहीं होगा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् पीसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इसकन संस्थापक आचार्य के द्वारा अध्याय 7 श्लोक संख्या 18. उदाराः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे कथम् आस्थितः सः हि युक्त आत्मा माम् एव अनुत्तमाम्
अनुत्तमाम्
यतिम्
यतिम्
उदारा सर्व एवैके
उदारा सर्व एवैके
ज्ञानित्वात्मैव मे मतम्
ज्ञानित्वात्मैव मे मतम्
आस्थितः स हि युक्तात्मा उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम् उदाराः विशाल हृदय वाले सर्वे सभी
एवा
निश्चयः एते
ये
ज्ञानी
ज्ञान
तो लेकिन आत्मा मेरे समान ही
मेरे
मतम
मत में
आस्थितः
आस्थितः
स्थित सह
सह
वी निश्चय युक्त
आत्मा
भक्ति में तत्पर
मुझ
एवा निश्चय
अनुत्तमा
परम
सर्वोच्च
गतिम लक्ष्यको निस्संदेह ये सब उदार चेत व्यक्ति है किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उससे मैं अपनी ही समान मानता हूँ वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रखकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चय रूप से प्राप्त करता है तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कौन ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाते हैं जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होते हैं वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाते हैं तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति में करने लगते हैं किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विराग नहीं हो पाते श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं साधवो हृदय मार्गम साधूनम हृदय अहम अनन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूँ भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता मैं रही तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहते हैं। यानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। ओम ज्ञान चिदानंदस्य ज्ञानम चरस्वरूपं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु स्थापितं येन हृदये स्वयं रूप कदाचन कदाचि सोदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयजपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सनातनरूपतन्त्रम् तमं सजीवम् सार्वैतं सार्वकृतं विरचनसहितं कृष्णचैतन्येव श्रीनिवाधा कृष्णपादां साधनावलोकन शिक्षकांश्च। हे कृष्ण गुरुना सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वदानुसुजे देवी प्रणमामि हरिप्रिये रक्षापर्वतभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीनिवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवान गीता से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान है। तो इस गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो श्री कृष्ण का भाव भक्त है, अर्जुन को संक्षेप में सभी आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। तो इसके पहले यही श्रीमद् भागवत का सप्तम अध्याय है और इसके पहले श्री कृष्ण आत्मा की स्थिति और कैसे एक जीव जो इस बद्ध अवस्था में संसार में है, कैसे एक जीव तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं और कैसे बद्ध जीव कर्म फल के अनुसार दूसरा दूसरा प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में श्री कृष्ण काम के बारे में कुछ व्याख्या की कि यदि कोई देवगण की आराधना करते हैं तो देवगण परस्पर व्यवहार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो काम के बारे में काम योग और काम का त्याग करना, ये दोनों के बारे में श्री कृष्ण कुछ बोले। और अभी इस अध्याय में श्री कृष्ण विशेषकर भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में बोलते हैं। और एक्चुअली गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलना चाहते हैं, गीता में काम ज्ञान योग संन्यास त्याग तो यही सब विषयों की बात है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण तो यही सभी विषय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, किंतु श्री कृष्ण का वास्तविक उद्देश्य केवल शुद्ध भक्ति प्रचार करना है। श्री कृष्ण काम ज्ञान योग इत्यादि ये सब विषयों के बारे में कुछ बोले भक्ति की श्रेष्ठता दिखाने के लिए कि काम ज्ञान योग ये सब छंद है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति से मैं प्रसन्न होते हैं। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण आसुरों की प्रवृत्ति एक श्लोक में बोलते हैं कि चार प्रकार व्यक्ति है जो कभी भी अवसर मिलके भी तो कभी भी राजी नहीं होते हैं मेरे चरण पर शरण लाना। नमाम दुष्कृषिणम मूढ़ा प्रपद्यंते नरात्मा माया कथित ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। जो असुरिक भाव संबंध व्यक्ति हो तो ऐसे लोग तो कभी भी श्री कृष्ण के चरण में शरण नहीं लगते। और चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो भक्ति शुरू करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनो जना सुकृते न वचनो अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी चार्थ। चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो भक्ति का आरंभ करते हैं, अर्थात इस भौतिक संसार में सब किसलिए यहां पर है, सब इच्छा द्वेष समुद्र द्वंद्व मोहेन भारत सार्वभूता भी समूह सागे यांति प्रणत। सब भगवान को द्वेष करते हैं और उसका फल से सब की अनेक असंख्य अपर्याप्त भौतिक इच्छाएं और इससे भवबंधन होते हैं। तो इस भौतिक संसार में सब जीव संघर्ष करते हैं ये सभी अपने इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, किंतु इस भौतिक संसार ऐसे है कि इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होते और पूर्ण होने के भी लोग संतुष्ट नहीं होते। जैसे कि एक व्यक्ति की इच्छा हो सकते हैं मेरे करोड़पति होना चाहते, तो करोड़ जो सब ऐसे चलते सब लगभग सब ज्यादा पैसा चलते सोचते कि यदि मैं करोड़पति होऊंगा तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा, किंतु हम देखते हैं कि करोड़पति अनेक है, एक नहीं है अनेक है, दो के ज्यादा है, इतने ज्यादा नहीं है, आप सब करोड़पति भी है मानते। लेकिन करोड़पति भी संतुष्ट नहीं होते, यदि एक करोड़ है तो सोचते हैं तो खाली एक करोड़ है क्यों, दो करोड़ चाहिए, यदि दो करोड़ मिलते हैं तो और असंतुष्ट होते कि तीन करोड़ चाहिए, तो कोई कभी भी संतुष्ट नहीं। तो सब करोड़पति होना चाहते हैं तो जो नहीं मिलते तो हताश और जो मिलते वो भी हताश, तो यही काफी नहीं है। तो यही भौतिक संसार। तो इसी अवस्था में यदि कोई सोचते कि हाँ तो इतना सा प्रयास किया नहीं, एक्चुअली चार प्रकार के व्यक्ति है, एक है अर्थार्थी पैसा मांगने वाले, संस्कृत में अर्थार्थी बोलते हैं, हिंदी पैसा मांगने वाले, पैसा पैसा पैसा, paisa kyon, dollar. तो एक प्रकार डॉलर मांगने वाले जो डॉलर प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, कि भगवान मैं सोना या सोच रहा था कि आप सबसे बड़ा धनी है तो आपके पास काफी है तो मुझको कुछ दो, मुझको भी चाहिए। और एक प्रकार का व्यक्ति है जो देखते कि जगत ऐसे है तो पैसा मिलने भी हम असंतुष्ट होते और पैसा नहीं मिलने भी हम असंतुष्ट होते, देखते कि पूरा जगत की स्थिति वैसे हम हमेशा सुख के लिए अनेक प्रयास करते फिर भी केवल दुख मिलते तो वो ज्ञानी बोलते। अर्थ जिज्ञास अर्थ थी अर्थ इसका अर्थ है, ये शब्द का अर्थ है, अर्थ मतलब जो दुखी ये भगवान वो दुखी हो तो दुख से मुझको बचा, ये मतलब ऐसा का अभाव वो एक प्रकार का दुख है। और दूसरे अनेक प्रकार दुख है, विशेषकर आज का यदि हम प्रचार करते हैं, प्रचार मतलब लोगों के बीच में जाना और ऐसे पूछना कैसे है, जरूर एक पुस्तक विषय भगवद गीता जाता हो तो यदि हम जनसाधारण के बीच में ऐसे प्रचार करेंगे से बातचीत करेंगे तो ऐसा होगा हम देखेंगे कि सभी घर में सभी लोगों को बहुत समस्या है। ऐसे आप भी डॉक्टर भी, हाँ हाँ डॉक्टर भी जानते हैं, सब लोग डॉक्टर के पास रहते हैं और ऐसा तबीयत ठीक नहीं है वो एक प्रॉब्लम है और मानसिक बहुत चिंता सभी घर की बहुत चिंता, एक घर में वो एक फैमिली का एक लड़का ड्रग एडिक्ट है और दूसरे घर में वो तो एक भाई दूसरे भाई को पूरा चीटिंग किया और पूरा पैसा लिया और दूसरे घर में वो एक संतान का वो इतना स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, पूरा फैमिली का पूरा पैसा नष्ट हो गया ट्रीटमेंट में फिर भी ठीक नहीं होते और दूसरा घर में वो बाप का हार्ट प्रॉब्लम है, सभी घर में सभी लोगों का बहुत बहुत समस्या यही आज प्रगति युग की स्थिति है। तो जो दुख में सोचते कि और क्या करूं, काफी प्रयास किया फिर भी अनेक अनेक समस्या में अभी क्या करूं तो भगवान के पास जाने तो अर्थ दुख में भगवान का वाचन करते हैं। अर्थ जिज्ञास और जो मतलब ज्यादा भक्ति के लिए ज्यादा गंभीर नहीं है लेकिन उसको उसके बारे में कुछ ऐसे जिज्ञासुक होते हैं या उसको पसंद है, हाँ कृष्ण भक्ति हाँ अच्छी है नहीं करो और एक प्रकार भक्ति ज्ञानी तो पूरी जगत की स्थिति देख के निर्णय करते हैं या विचार करते हैं कि पूरी जगत की स्थिति दुखमय है और एक भरोसा है हवा, तो इस श्लोक में आज का श्लोक जो हम मानते हैं, इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी लोग जो मेरी भक्ति में आते हैं तो सभी उदार है। उदार अर्थात विशाल हृदय वाले, सब क्या लोगों की बुद्धि उदारता बहुत कम होती, सब तो केवल खुद के लिए सब कुछ करते हैं। प्रभुपाद व्याख्या की है कि लोग बोलते एक आदमी तो एक लड़का एक लड़की को बोलते आई लव यू, लेकिन एक्चुअली वो लड़की को प्रेम नहीं करते तो उसको दोष करना चाहते। वो लड़की के लिए ही कुछ एक्चुअली दिल से कुछ नहीं, वो चाहते हैं उसको वो करना, इससे बोलते आई लव यू। उसका उद्देश्य नहीं है वो लड़की की सेवा, मतलब आई लव यू और उसको कुछ फोन देना है, कुछ ऐसा कुछ उपहार देना है, लेकिन एक्चुअली हमेशा सोचते कैसे उसको बोलना। तो भक्ति में ऐसी भावना नहीं होती। भक्ति का मतलब भगवान की सेवा करना आहितु की, जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं होती। तो आरंभ में जो भक्ति करते हैं अर्थार्थी अर्थ, मतलब जो भक्ति का शुरू करते हैं तो प्राथमिक अवस्था में भगवान से कुछ चाहते हैं, भक्ति करते हैं किंतु पैसा चाहते हैं या समस्याओं का समाधान चाहते हैं। फिर भी वो भावना है कि ये मेरा प्रभु है, प्रेम का शुरू होता है। किंतु श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये सभी प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय है। एक्चुअली भक्ति में शुद्ध भक्ति में कर्म और ज्ञान नहीं होना चाहिए। हम अनेक बार सुने कि कर्म और ज्ञान शुद्ध भक्ति में ये दोनों वर्जित है, तो किसके लिए श्री कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे, ज्ञानी मेरे इस चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मेरे सबसे प्रिय है। तो कर्म और ज्ञान उपेक्षित है, क्यों? मतलब कर्म जब हम बोलते हैं कर्म और ज्ञान भक्ति में नहीं होना चाहिए, ये अर्थ है कि कर्म मतलब वो भावना कि मैं खुद का हाथ से काम करता हूं और उससे फल मिलेगा, या हम कर्मकांड की विधियां पालन करते हूं, जैसे हम स्वर्गवास प्राप्त करेंगे तो वो कर्मकांड वो उपेक्षित है। और ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान उपेक्षित है? वो ज्ञान जिसमें ज्ञानियों सोचते कि ब्रह्मास्मि अहम् भी भगवान हूं, या हम परम सत्य की ज्योति में लीन हो जाएंगे, तो वैसे ज्ञान उपेक्षित है। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति काम और ज्ञान ही है. भक्ति क्या है? मंदिर साफ करना, भगवान के लिए भोग तैयार करना, भगवान की आरती करना, तो वो सब काम है ना, कुछ काम होते हैं. लेकिन वो साधारण काम नहीं है, वो भक्ति है, वो कृष्ण के लिए काम है. तो वो काम करना चाहिए. लेकिन वो काम मैं काम करता हूं जिससे मैं खुद फल प्राप्त करूंगी और मैं वो फल भोग करूंगा, तो ऐसे काम भक्ति में नहीं होना चाहिए. और ज्ञान, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, और ज्ञान से आपने ज्ञान का वो ज्ञान का बल से मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो वो ज्ञान भक्ति के विपरीत होते हैं. क्योंकि भक्ति में भावना क्या है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान की कृपा के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, भगवान की कृपा पर हम निर्भर करते हैं. लेकिन भक्ति में एक ज्ञान भी है. भक्ति क्या है? भगवान को प्रेम करना. तो कैसे भगवान को प्रेम करना यदि हम नहीं जानते भगवान कौन और भगवान कैसे भगवान है? तो इसलिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए. भक्ति शास्त्र, गीता, श्रीमद् भागवत, जैसे कि उससे हम ज्ञान मिलेंगे. प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम. कृष्ण को प्रेम करने, तो किस लिए कृष्ण को प्रेम करेंगे? हम भाई बहनों या अपनी पत्नी या पति, माँ बाप, ये सब का प्रेम कर सकते. तो कृष्ण प्रेम उसमें क्या है विशेष? तो हम सभी लोगों को प्रेम करते हैं, तो किस लिए कृष्ण का प्रेम? कृष्ण और किस लिए सर्वधामान परित्याज्यं मामेकं शरणं? केवल श्री कृष्ण को प्रेम करना चाहिए. तो क्यों? क्यों कृष्ण के लिए प्रेम होना चाहिए? और किस लिए हम बोलते हैं कि ये सब भौतिक स्नेह भवबंधन का कारण है और वो वास्तविक प्रेम नहीं है? तो ये सब समझने के लिए शास्त्र पढ़ने चाहिए कि कृष्ण भगवान है, सच्चिदानंदमय है, और कृष्ण के असंख्य दिव्य गुणों है जिससे वे सबको आकर्षण करते, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण है. भगवान की दिव्य गुणों है, तो इसलिए आत्मा, जीवात्मा का स्वभाव है कृष्ण को प्रेम करना. तो ये सब समझना चाहिए. और ये सब भक्ति कैसे करना है? तो सब कुछ शास्त्र के अनुसार करना चाहिए. तो भक्ति में जरूरी ज्ञान है. तो यदि ज्ञान नहीं होते हैं तो हम नहीं होगा कि भगवान कौन है, किस लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए और कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए. तो ज्ञान होना चाहिए. लेकिन वो ज्ञान, वो प्रयास कि ज्ञान से मैं मुक्त होऊंगा और ज्ञान से समझ लूंगा कि मैं स्वयं भगवान है, तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है. तो देखते इतने पंडित है, ब्रह्मवादी पंडित, तो हजार हजार श्लोक जानते हैं और संस्कृत पंडित भी है, तो एक परिपेक्ष से वो पंडित है, ज्ञानी है. लेकिन ऐसे पंडित का क्या सिद्धांत है? कि सभी शास्त्र पढ़ने से हम समझते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं और भगवान का कोई व्यक्ति नहीं है, वो सभी आत्मा एक है। तो वो ज्ञान मार्ग से ऐसा खुद सिद्धांत अपर सिद्धांत प्राप्त होते, तो उसी भक्ति ने वो ज्ञान उपेक्षित। एक्चुअली वो ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, यही ज्ञान है कि कृष्णस्तु भगवान जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदभेद प्रकाश, तो यही ज्ञान है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी प्रकार के भक्तों में ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि वो ज्ञानी वास्तविक ज्ञानी, ज्ञानी जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका दास हूं और जीवन का एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, अहितु की सेवा जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं रखते। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी भक्तों में ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय है, क्योंकि वो भक्त जो ज्ञानी है जिसके पास भगवत तत्व विज्ञान है, तो भक्ति नहीं करते हैं कोई भौतिक इच्छा पन्न करने के लिए, और भक्ति नहीं करते हैं दुख से बचाने के लिए, भक्ति करते शुरू से भक्ति करते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, और ऐसा भक्त बहुत तुरंत तुरंत ही शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि शुरू से उसका उद्देश्य है। जो भक्ति करते हैं और सोचते हाँ मैं भी माला करूंगा कीर्तन करूंगा, लेकिन सोचते कि ये सभी करने से भगवान मुझको आशीर्वाद देंगे और मैं क्रोपति बन जाऊंगा, तो भक्ति करते हैं लेकिन एक्चुअली वो भक्त का उद्देश्य अलग है, भावना अलग है। तो इसलिए तो वो शुद्ध भक्ति इतना तुरंत नहीं बनता। एक्चुअली कोई भी उद्देश्य के लिए भी यदि हम भक्ति करेंगे और यदि हम शुद्ध भक्तों की संगति मिलेंगे, तो वो शुद्ध भक्तों का संग का प्रभाव से हम भी वो शुद्ध भक्ति की भावना मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अनेक जो भक्ति करते हैं एक भौतिक इच्छा पढ़ने के लिए, और वो भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं होते हैं और भक्ति भक्ति को वर्जन करते सबसे कि भक्ति किया लेकिन उससे फायदा नहीं हो। तो इसलिए ज्ञानी होना चाहिए। एक्चुअली जो भगवत तत्व विज्ञान मिलते हैं जानते हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, और ये सब मैं करोड़पति होऊंगा या मैं फेमस होऊंगा, मैं फिल्म स्टार होऊंगा, मिस वर्ल्ड होऊंगा, तो ये सभी इच्छा निरर्थ बेकार। जीवन का एक ही उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, किंतु जो जिसका हृदय में वो भावना की उत्पत्ति नहीं हुई, तो ये सब गीता भी पढ़ सकते माला भी कर सकते लेकिन ये सब नहीं समझ। तो इसलिए भक्ति में शुद्ध भक्ति में जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, तो लोगों को यही प्रचार करना चाहिए कि पहले सोचिए vichar karo. Is bhautik jagat dukamaya. Yehi prachar logon ko karna chahiye. Shuru mein hum logon ko bol sakte hain ki mala karo. Jo bhi avasya mein ho mala karo. Hare Krishna, Hare Krishna. Kam se kam ek bar mala karo. Lekin dheere dheere logon ko batana chahiye. Dekho bhai, ye jagat ki kya sthiti hai? Aap pura jivan mein sankarsh karte hain aur usse kya fayda hua? Aap karopati hone ke bhi usse kya fayda hoga? To maran ka samay karopati aur riksha wala ek hi avastha mein. Or actually, Kropati to jada absamente, jada papkarne, to Kropati to kro papkarne wale, to riksha wale bhi papi, lekin itne jada pap nahi kar sakte. To isliye riksha wale to pap mein keval lakpati, or Kropati to kro papkarne wale. So, Kropati, Lakpati, Kuchli, Neipati, what it can be. So, sab mar jate hain, aur uske baad punarjanma hote hain. To, yehi dukmay hai. To, actually, sab log yehi baat nit sunna bhi ki koi ichcha nahi. Aur sunke bhi wo nahi samajhte. समझने की शक्ति नहीं है. बुद्धिमान लोग भी, शिक्षित लोग भी ये सब नहीं समझते. बहुत सरल बात है, स्पष्ट बात है कि जगत दुखमय है, सब मार जाते हैं और जीवन में भी मार जाने के पहले बहुत बहुत दुख होते हैं. लेकिन ज्यादा लोग ये सब नहीं समझते. क्यों? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास राय वजयते. ये महाभारत का एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि जिनके स्वल्प पुण्य है, कम पुण्य होने वाले लोग, तो ऐसे लोग का विश्वास नहीं होते हैं भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद में. वो सोचते हैं कि ये दाल चावल है और हम घर नहीं बनाते, और मंदिर में और या आपका घर भक्त के घर में बनाते हैं, तो हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, और क्या फर्क है? यही राइस डाल है, वो भी राइस डाल है, और आप बोलते हैं ये प्रसाद है, कृष्ण प्रसाद. लेकिन वो साधारण दाल बाट, तो महाप्रसाद को विश्वास नहीं करते. एक्चुअली देखते हैं कि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि हम महाप्रसाद प्रसाद वो हम विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास करते दूसरे रूप में. जैसे कि बहुत दूसरे धर्म के लोग हैं जो प्रसाद ग्रहण नहीं करते, यदि हम देते हैं तो हाँ हम नहीं लेंगे. दूसरे धर्म है मतलब ऐसे, तो प्रसाद नहीं लेते. क्यों नहीं लेते? यदि सोचते हैं कि वो लाडू, हम लाडू प्रसाद, तो लाडू है तो लाडू है. यदि सोचते कि कोई कृष्ण नहीं है और ये लाडू जो हम मंदिर में भगवान को अर्पण करते हैं, तो कोई कृष्ण नहीं है, मूर्ति तो कुछ नहीं है, ऐसे लोग सोचते. तो प्रसाद भी कुछ नहीं है, तो एक हमारे ख्याल में ये प्रसाद है, तो आपका ख्याल में तो एक साधारण लाडू है, तो उसको ग्रहण नहीं करते क्यों? लाडू अच्छा नहीं लगते, अच्छा लगते, लेकिन प्रसाद ही लाडू नहीं लगते। तो एक्चुअली वो चिन्ह है कि वास्तव में वो स्वीकार करते यही प्रसाद है, स्वीकार करते लेकिन निंदा करते नहीं, हम नहीं लगते। तो महाप्रसाद गोविंद, गोविंद को विश्वास नहीं करते, जैसे कि एक महात्मा थे, वो भारत की स्वाधीनता का संघर्ष का समय महात्मा, एक महात्मा हरबंदस है, जो आत्मजीवनी में लेकर कि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि कृष्ण ऐसा व्यक्ति कभी था महात्मा। और कृष्ण गीता में बोलते महात्मा नास्तुमां भारत दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनस ज्ञाता भूताधि माश्रिता। लेकिन वो कहते हुए महात्मा बोलते कि कोई कृष्ण कभी नहीं था, मैं विश्वास नहीं करता। तो गोविंद को विश्वास नहीं करते, वो रोज भगवद गीता पाठ करते, लेकिन कि कृष्ण श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच, और जैसे बड़ा भक्त गीता पाठ करते, लेकिन कि कृष्ण जो गीता बोलने वाले हैं उसको विश्वास नहीं करते। जो कृष्ण जो बोलते हैं तो किसके विश्वास करते हैं? तो महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण है, मतलब भगवान का दिव्य नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। और वैष्णव है, वैष्णव को विश्वास नहीं करते, वैष्णव कौन साधारण व्यक्ति, स्वल्प पुण्यवतम राजन, इसका पुण्य सुअल्प बहुत कम है, ये सब को विश्वास नहीं करते। तो विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कई व्यक्ति है जो बोलते हैं मैं किसी को और कई वस्तु को विश्वास नहीं करता, मैं सब कुछ अविश्वास करता। तो वो बात जो बोलते हैं वो विश्वास करते हैं, अपनी बात को अपनी बात को विश्वास करते, मैं किसी को विश्वास नहीं करता, तो खुद को विश्वास करते, खुद की बात को विश्वास करते। सब स्वप्न है, कुछ नहीं है, सब काल्पनिक है, ऐसा कोई बोलते हैं। तो भगवान को विश्वास करते और किसी को विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं है। तो मत खाओ, चाव चाव दाल में कोई विश्वास नहीं है, उसमें विष हो सकते, किसमें उसको विश्वास करते हम? सबका विश्वास है, विश्वास है कि यदि हम काम करते तो किससे विश्वास है कि महीना के अंत में कितना मिलते, 10,000 डेढ़ मिलते, इतना सब नहीं, ऐसा इतना ज्यादा नहीं मिलते, 1,000 ऐसा, 1,000 यदि ऐसा विश्वास नहीं था तो काम नहीं करते। तो वही विश्वास है, तो सबका विश्वास है। तो उच्च विश्वास होना चाहिए कि इस भौतिक संसार के ऊपर मालिक है, तो वो अंधविश्वास नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे कि दुबई में हम इधर उधर जाते हैं तो जरूर विश्वास दुबई का महाराज है शीख बोलते हैं और सरकार भी है तो हम सरकार को नहीं देखते लेकिन विश्वास है कि सरकार ही है तो यदि सरकार नहीं था तो कैसे सब कुछ चलते तो हम विश्वास करते हैं कि सरकार है और शीख है तो नहीं देखते लेकिन विश्वास है तो वो अंधविश्वास नहीं है तो उस प्रकार भी हम देखते हैं पूरे ज्यादातर ज्यादा चलते हैं तो जरूर सरकार भी है और प्रधानमंत्री भी है तो विश्वास होना चाहिए कि जरूर ही भगवान की अस्तित्व है लेकिन केवल ये भावना कि मैं भगवान को विश्वास करता हूं तो वो ठीक है वो अच्छा है लेकिन प्रभुपाद बोले कि केवल आई बिलीव इन गॉड मैं भगवान को विश्वास करता हूं तो वो भावना अच्छा है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है गॉड इज ग्रेट भगवान महान है अल्लाह गॉड इज ग्रेट प्रभुपाद बोले कि समझना चाहिए भगवान कैसे महान है वो समझना चाहिए तो इसलिए शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तो भगवान कैसे भगवान है और हम और भगवान हम दोनों के बीच क्या संबंध है और कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए और किस लिए भक्ति करना चाहिए यदि हम सोचे हाँ हम भक्ति करेंगे और भक्ति करने से भगवान से हम बहुत सुविधा बहुत आशीर्वाद मिलते तो वो वास्तविक भक्ति नहीं है तो कोई भक्त भक्ति कर सब जो भक्ति करते हैं जो भक्ति करते हैं माला करते हैं आरती इत्यादि लेकिन जो ज्ञानी है जो भक्ति करते हैं इस ज्ञान के सहित कि हम भक्ति करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए वो ही प्रेम है और ऐसी भक्ति करने से तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं जो पूरा दिव्यानंद का आधार है और दूसरा भक्ति जो एक ही माला करते हैं कीर्तन में अंश ग्रहण करते हैं इत्यादि लेकिन उसका हृदय में यही उद्देश्य है कि मैं भक्ति करता हूं और उससे भगवान से कुछ प्राप्त होना चाहिए मैं भक्ति करता हूं और इससे मैं क्रोधपति बन जाऊंगा तो दोनों भक्ति करते हैं लेकिन दोनों का फल एक ही नहीं होता तो एक भक्त तो असली भक्ति में होते हैं और दूसरा तो क्रोधपति हो सकते हैं यदि इस जीवन में नहीं तो अगली जीवन में लेकिन अगली जीवन इसका मतलब घर जाना पुनः जन्म लाना दुख भगवान जरूर सबका इच्छा जो भक्ति करते हैं जो सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं अफसोस नहीं होना चाहिए यदि आप सोचते कि मैं क्रोधपति होना चाहता हूं मैं गुस्से में भक्ति करूंगा और 10 साल के बाद तो अभी तक मैं केवल 10 रुपया का पति तो क्रोध भगवान तो मुझको क्रोध नहीं दिए क्यों तो आप शांत हो विश्वास करो आप क्रोधपति होंगे भगवान का आशीर्वाद से लेकिन करीब इस जीवन में नहीं होगा तो आप क्रोधपति हो गए तो आप करोड़ रुपया मिल सकते या करोड़ डॉलर भी मिल सकते, लेकिन उससे सुख शांति और कृष्ण प्रेमानंद नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअली ज्ञानी होना चाहिए और ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अद्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम्। उत्तम भक्ति यही लक्षण है कि उसमें कोई उद्देश्य नहीं है काम या ज्ञान से कोई भौतिक फायदा प्राप्त करना, तो यही शुद्ध भक्ति है। और भद्र अवस्था में भी या कनिष्ठ अवस्था में भी जो ऐसी भक्ति करते हैं तो भगवान तो विशेषकर ऐसे भक्तों को बहुत अनुग्रह करते हैं और ऐसे भक्त को सब सहायता देते हैं, जैसे कि वो भक्त आसानी से शीघ्र से भगवान के पास जा सकते हैं। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मां प्रयान्ति ते। जो प्रीति से मेरी भक्ति करते हैं, प्रेम प्रीति से श्री कृष्ण करते हैं, तो वैसे भक्त को मैं सभी बुद्धि देता हूं, जैसे कि वो तुरंत ही मेरे पास आ सके। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। बहुत लोग तो भक्ति में आते हैं क्योंकि मानसिक अशांति होते हैं या परिवार में समस्या होते हैं या तबीयत ठीक नहीं है, और यही सभी कारण के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद तो मालूम होना चाहिए कि ये सब भौतिक भार प्राप्त करने के लिए भक्ति करने का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। भक्ति करनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उससे यदि हम प्रयास करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए तो उससे भी हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं तो भक्ति में ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप भक्ति करते हैं किंतु वो भक्ति शास्त्र में प्रवीण होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमको बहुत अनुग्रह करके श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितमृत, भगवद गीता इत्यादि सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव शास्त्र अनुवाद किया और बहुत सरल भाषा में भक्ति का सभी रहस्यों व्याख्या किए। तो हम अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस कौन भक्ति समस्त में आया है। तो हमारा कर्तव्य है ये सभी पुस्तकों पढ़ना। तो साधारणतया हम भक्तों को कुछ चाप देते, माला ज्यादा करो, एक माला करते हैं अच्छा है, दो करो, दो करते हैं अच्छा है, तीन करो, तीन करते हैं अच्छा है, चार करो, सोलह करो, सोलह के ज्यादा भी करो, और ये सब नियम पालन करो। लेकिन साथ ही साथ चाप चाप नहीं, धीरे धीरे लोगों को प्रेरणा करना चाहिए ज्यादा माला करो, साथ ही साथ भक्तों को बताने चाहिए प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ना, क्योंकि यदि हम भक्ति ज्ञान मिलते हैं तो अपने आप हम उत्साही होंगे माला और दूसरे प्रकार की भक्ति करने। यदि हम समझते हैं कि इस कृष्ण भक्ति करने से हमारा परम कल्याण होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी, तो अपने आप तो उत्साह माला करने के लिए, सेवा करने के लिए उत्साह। और यदि हम माला करते हैं और सेवा करते हैं और दूसरी प्रकार की भक्ति करते हैं, लेकिन ये ज्ञान हमारे हृदय में स्थिर नहीं होते हैं, तो कोई भी समय समस्या हो सकते हैं और हम सोचेंगे कि मैं इतना सब भक्ति किया फिर भी इतना समस्या होगा, ये भक्ति क्यों छोड़ना चाहिए, ऐसा होता है कि भक्तों भक्ति करते हैं बहुत उत्साही होते, वो कुछ समस्या होते हैं, पूरा पैसा का नुकसान होते हैं या एक्सीडेंट होते हैं या ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कभी कभी होते हैं कि एक भक्त है तो मतलब कहते हुए भक्त जो तिलक है और मुंडन है और माला करते हैं, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं होते हैं और उसका व्यवहार देखने से ही और ऐसे भक्तों का व्यवहार से ही तो जो भक्ति करते हैं तो सोचे कि भक्ति करने से लोग वैसे ही होते हैं और ठीक है मेरी भक्ति ऐसा होते हैं। दुबई में नहीं मतलब नहीं बैठा नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ दिन के पहले कुछ विवाद हुआ लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं होते, लेकिन कोई भी कारण हो सकते हैं, माया बहुत प्रभावशाली नहीं है और यदि कोई भक्ति नहीं आते तो माया तो ज्यादा सोचते तो कैसे उसको खींचना और मेरे वास में वापस लाना, तो माया हमको बहुत परीक्षा देते हैं। और यदि हम ज्ञानी नहीं होते, यदि हम नहीं समझते कि ये माया की परीक्षा है और जरूर ही यदि मैं भक्ति में स्थिर होऊंगा तो यही सभी समस्या होने के भी तो जरूर श्री कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे, कौन दिया पति जाने ही नाम ही भक्त प्रदर्शित। यदि शास्त्र और विश्वास है कि जो भी होते हैं वो मेरा पूर्व जन्म का कर्म फल है, ठीक है जो भी हो मैं भक्ति करता हूं, भूख तो मुझको परेशान देते हैं और मेरा सब पैसा नाश चल रहा है, ठीक है जो भी हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यदि ऐसे विश्वास है, मजबूत विश्वास है, शास्त्रीय विश्वास है, तो भक्तों तो कभी भी भक्ति नहीं छोड़ेंगे और वो विश्वास से भगवान बहुत प्रसन्न होते कि ये मेरा असली है। तो इतना सा दुख होते हैं फिर भी मेरी भक्ति नहीं चढ़ते तो वो वास्तविक भक्ति, लेकिन जिसका विश्वास मजबूत नहीं है तो कोई भी समय भक्ति से भ्रष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए नवीन भक्तों को ये बताना चाहिए ज्यादा माला करो ज्यादा सेवा करो और शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप सब व्यस्त गृहस्थी है तो जैसे मैं आलसी नहीं है, आप बहुत श्रम करते हैं तो जैसे मैं आप इतने सब समय नहीं मिलते हैं शास्त्र पढ़ने के लिए, लेकिन समय निकालना चाहिए इसलिए। तो सब लोग जो बहुत मेहनत करते हैं तो टीवी भी देखते हैं, वो पार्टी भी जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सभी लोगों के पास समय है तो टीवी मत देखो, पार्टी मत जाओ, समय रख दो शास्त्र पढ़ने के लिए, रोज शास्त्र पढ़ने चाहिए। यदि आप बहुत बहुत ही व्यस्त है तो कम से कम 10 मिनट पढ़ो, और केवल श्लोक पढ़ना नहीं है तो श्लोक याद करना वो अच्छा है, लेकिन प्रभुपाद वाले की वो श्लोक पढ़ने से मेरा तात्पर्य पढ़ना और मत और जरूरत, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं वो श्लोक, लेकिन एक्चुअली वो गीता श्लोक का अर्थ बहुत ही यही ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, इसलिए प्रभुपाद का श्लोक और तात्पर्य के साथ करना चाहिए। तो अभी बाबा की लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, और उस समय नंद कुमार प्रभु मुझे बाबा की ऊसाई है, आपके पास भी समय नहीं है तो अभी अभी बाबा शास्त्र पढ़ो बस। और एक अनुरोध आछे, आपनी दया करिया किचु बांग्ला भाषाय बोलुन, तो
हरे कृष्ण।
आमेन।
Now we're going to have a small slideshow. In a few minutes, Guru Maharaj, Bhakti Goswami Maharaj will also be joining me. We'll probably speak a little about some of these books. But the idea is to encourage सभी को encourage करने के लिए कर रहे हैं कि ये अभी जो स्लाइडशो में प्रेजेंट करने वाले पुस्तक हैं, ये सब भक्ति गोस्वामी महाराज के लिखी हुई या इनके इंस्पिरेशन से इनके द्वारा पब्लिश की किया हुआ पुस्तक है। ये सब पुस्तक का कॉपीज अभी हमारे पास है पीछे, यू कैन प्लीज गो राइट एट द बैक एंड यू कैन कलेक्ट, यू कैन बाय दीज बुक्स, दे आर अवेलेबल, पीछे से ले सकते हैं। कुछ पुस्तक गुजराती, हिंदी, मराठी और बंगाली लैंग्वेजेस में भी है। तो अभी ये स्लाइड शो जो दिखा रहे हैं, दीज आर डिफरेंट बुक्स, बट बिफोर आई स्टार्ट विद द स्लाइड शो, एक और विनती है। आज ये हॉल से हमें 1:45, 20 minutes, we have to be out of this place. So, this will take 10 minutes and I request everybody to be as quick as possible and cut short on any interactions. Devotees, please empty the place immediately after this slideshow. Hare Krishna. Ye pehla slide jo hai, Beginner's Guide to Krishna Consciousness, इस पुस्तक में तिलक लगाने के बारे में, तुलसी का पालन कैसा करना है, हमारा बेसिक सॉन्ग बुक में क्या गाना हमको प्रतिदिन गाना है, हाउ टू अप्रोच गुरु, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर गिवन इन दिस बुक। ये उसी पुस्तक का गुजराती वर्षन है, ये भी इधर हमारे पास है। उसी पुस्तक का हिंदी कवर, कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी, और मराठी ये भी है हमारे पास। भक्ति विकास स्वामी महाराज का उनका प्रथम अटेंशन जो है, कृष्ण भक्ति इनका प्रथम सेवा है, sabhi ke liye to reach everybody, sadharan jan ko Prabhupada ki jo aur Krishna Bhakti ki jo message hai wo pahunchane ke liye unhone bahut pustak likhi hai, unme se this Brahmacharya and Krishna Consciousness, a very very important book. We have plenty of copies in English behind. If anybody needs, please take them. ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पुस्तक है युवकों के लिए, मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया, ट्रांसलेटेड इन टू वेरियस लैंग्वेजेस. वी हैव फ्यू कॉपीज हियर, वी हैव गुजराती एंड द मराठी वर्जन ऑफ द सेम बुक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप में से जिनका भी बच्चे इंडिया में है या इधर भी है, उनके लिए ये पुस्तक बहुत आवश्यक है ताकि वो अपना जीवन के बारे में और कृष्ण भक्ति के बारे में समझे. ग्लिम्सेस ऑफ ट्रेडिशनल लिमिटेड लाइफ, ये वैदिक हमारे ट्रेडिशनली भारत में कैसे जीवन बिताते थे लोग, इसके बारे में नॉर्थ इंडिया में कुछ, साउथ इंडिया में कुछ, क्या क्या करते थे आदिकाल में लोग, इसका कुछ इंटरव्यूज हैं जो महाराज ने कंपाइल करके एक ग्लिम्सेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ. I think we only have this in English. As of now. English mein hai abhi, but translation ka kuch kaam chal raha hai.
Russian mein bhi
hai. Oh, and Russian also, which we don't have yet.
Would you like to meet
people
to
rest of them? This is story of Rasikananda. Rasikananda जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु के एक दो पीढ़ी बाद आए उन्होंने, और उनका चरित्र और उसका बहुत डिटेल, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी. आई वुड सजेस्ट एज मेनी डिवोटीज एज पॉसिबल टू टेक, बट आई डोंट थिंक दे हैव एनी नॉलेज. ओके, इंग्लिश. रामायण के संक्षेप में, हमारे प्रभुपाद के डिसिपल्स के द्वारा किया हुआ पुस्तक नहीं था, इसके अभाव के कारण महाराज एनकरेज दैट दिस बुक बी डन. महाराज बेसिकली एडिटेड एंड पब्लिश दिस बुक, बट देयर सम अदर डिवोटीज हु बेसिकली हेल्प इन पुटिंग टुगेदर दिस बुक. ट्रांसलेशन इटसेल्फ इज डन बाय समथिंग एल्स. इसका गुजराती
संस्करण एडिशन संस्करण,
महाराज ने इसका संस्करण किया है. संस्करण
एडिशन
हरे कृष्ण. ये रामायण पुस्तक का गुजराती कॉपी है, पर इधर स्कैन में नहीं आया हमारा. ये वंशीदास बाबा जी करके, ही इज वन ऑफ दी गौड़िया आचार्य, और इनका बहुत इंटरेस्टिंग चरित्र है. जिनको भी पढ़ना है प्लीज पिक इट अप. इस बाबा जी के बारे में एक ही पुस्तक है, दिस इज ओनली अवेलेबल बुक अबाउट बाबा जी. दिस इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. सबसे विनती है कि जल्दी
अमृत प्रसाद मरीज को
देता.
किसी को जो भी पुस्तक ले रहे हैं, पुस्तक में महाराज का साइन करवाना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज पिक द बुक एंड कम टू महाराज फॉर सिग्नेचर. हरे कृष्ण.